वरदान लुटाने वाले सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले सद्ज्ञान सुनाने वाले। कैसे बतलाए वरदान लुटाने वाले सद्ज्ञान सुनाने वाले।
ओम शांति। एक दिन एक दादा और एक पोता एक समुद्र तट पर घूमने के लिए जाते हैं, और वो जो दादा है अपने नटखट पोते को एक चैलेंज करते हैं। जो पोता नटखट भी होता है और इतना जिज्ञासु भी होता है, उसके प्रश्न इतने होते हैं कि दादा को हमेशा रेडी रहना होता था कि अभी ये पोता क्या प्रश्न करेगा। तो आज वो अपने पोते को एक चैलेंज करते हैं। उस समुद्र तट पर जो रेत होती है, उस रेत में अपनी छड़ी से एक रेखा बनाते हैं, रेत पर एक लकीर बनाते हैं, और उस अपने पोते को कहते हैं कि अभी आपको इस लकीर को टच किए बिना छोटा करके दिखाना है। अब पोता तो सोच में पड़ जाता है और अपना चैलेंज जो है पूरा नहीं कर पाता है। फिर वो अपने दादा से प्यार करता है, बोलता है बताओ ना कैसे करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के बाद दादाजी अपनी छड़ी से उसी लकीर के बाजू में दूसरी लकीर बनाते हैं, जो पहली वाली लकीर से कैसी होती है, बड़ी होती है। तो आपे ही क्या हो जाता है, पहली वाली लकीर छोटी हो जाती। बिल्कुल उसी तरह आज हम बच्चों के आगे प्यारे प्यारे बाप दादा दो रेखा नहीं तीन रेखा समझाने आए हैं। तो ये मुरली जो है 20 फरवरी 1987 की है और आज की डेट है 6 दिसंबर 2020। मुरली का टाइटल है याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की तीन रेखाएं। तो ये जो मुरली है हमारे चार सब्जेक्ट को बहुत ही क्लियर कर रही है। एक तो बाबा नॉलेज दे रहे हैं, माना पहला जो सब्जेक्ट है वो इसमें इंक्लूड है। फिर बाबा याद की लकीर के बारे में कुछ समझा रहे हैं। फिर धारणा, जिसमें मुख्य पवित्रता की धारणा है, उसको कैसे धारण करना है सबके बीच में रहते हुए, और जो चौथा सब्जेक्ट है सेवा का, तो उस सेवा के सब्जेक्ट में भी सहज सफलता कैसे प्राप्त करें उसकी विधिया बाबा ने बताई हुई है। तो आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाबा सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं और बाबा को सेवाधारी जो बच्चे हैं, जो समान है, वह बच्चे सदा प्रिय है। बाबा ने उन बच्चों की महिमा की है कि बाबा आए हैं और वो तीन लकीरें देख रहे हैं और वो लकीरें चमक रही है हर एक के माथे पर। तो जैसे भक्ति मार्ग में देखा जाता है शिवलिंग के ऊपर भी क्या किया जाता है, तीन लकीरें लगाई जाती है, सफेद कलर की होती है, और जो शिव के भक्त है वो भी उसको लगाते हैं, और जो त्रिमूर्ति का रूप दिखाया जाता है, दत्त का रूप जो कंबाइंड रूप है ब्रह्मा विष्णु और शंकर का, तो उनको भी ये तीन लकीरों का ही तिलक लगाया जाता है और उनके भक्त भी वही लगाते हैं, त्रिपुंड कहते हैं। तो बाबा आज रिजल्ट देख रहे हैं। कल भी जो मुरली चली बाबा की डायमंड हॉल में, उसमें भी बाबा ने रिजल्ट देखी थी। वो कौन सी रिजल्ट देखी थी? संपन्न और संपूर्ण कहां तक बने हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा आज रिजल्ट देख रहे हैं। तो आज भी बाबा कौन सी रिजल्ट देख रहे हैं कि वर्तमान समय ये जो तीन प्रकार की लकीरें हैं मस्तक पर जो चमक रही है उसको बाबा देख रहे हैं। तो पहली लकीर बाबा ने बताई कि जो योगी जीवन है, संपूर्ण योगी जीवन की लकीर पहली, दूसरी है पवित्रता की लकीर और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। पहली है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी पवित्रता की लकीर और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। अब उस लकीर में क्या होता है, जब ब्रह्म मुहूर्त पर वो लोग स्नान आदि करके भगत लोग क्या करते हैं, अपने आप को तिलक देते हैं, अपने इष्ट को वो तिलक देते हैं। उस लकीर लगाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है कि वो स्पष्ट हो, लकीर सीधी हो, बीच में वो कटी हुई ना हो या वो कैसी हो, टेढ़ी ना हो। और कौन सा ध्यान रखा जाता है कि वो बीच में मिटे नहीं, उसका ध्यान रखा जाता है। तो बिल्कुल आज भी बाबा ने इन तीनों लकीरों को कैसे अमिट रखना है, कैसे सीधा रखना है, कैसे उन रेखाओं को अव्यभिचारी रखना है, वो आज बाबा ने समझाया है। तो किसी किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में रहने वाली है, दूसरी बात सदा अटूट रहती है, सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही व किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी है। तो बाबा अभी पहली लकीर जो है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर बता रहे हैं कि कोई है बीच में बाप के साथ संबंध जोड़ने में या खुद का कनेक्शन उतना क्लियर है, इस जीवन में ब्राह्मण जीवन में चलते चलते हर एक का कारण अलग अलग होता है। कोई खुद ही भगवान की खोज में होता है तो कोई रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस जाता है और उसको शिव बाबा मिल जाता है। तो हम किस आधार से इस जीवन में हैं, इस ब्राह्मण जीवन में मेरी जो वो लकीर है संपूर्ण योगी जीवन की, वो कोई निमित्त अभी भी बना हुआ है या मैं खुद अपना कनेक्शन बाबा के साथ जुटा हुआ हूं। तो बाबा अभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई बीच में है सहारा या डायरेक्ट बाप से कनेक्शन है, तो अपने आप को चेक करना है। हाँ, कि कोई पुरुषार्थ कराने वाला हो, कोई देखने वाला हो, तब हम करेंगे। अगर कोई देखने वाला नहीं है तो हाँ, साधन मिले तो करूंगा, कोई फैसिलिटी मिले तो करूंगा। हाँ, तो दूसरे है या बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले, तो कभी कभी टेढ़े भी बन जाते कि नहीं, मुझे चांस नहीं मिला तो अब मैं नहीं करूंगा, तुरंत क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो यह है याद के लकीर की विशेषताएं। कौन सी? हाँ, कोई सहारा है, सीढ़ी है, सीधी है या टेढ़ी है। अब याद की लकीर यहां पर पूरी होती है। अब दूसरी लकीर कौन सी, जिसके लिए बाबा ने कहा कि वो सदा अव्यभिचारी है, एक बाप है या बीच में कोई और याद आता है। तो दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा, इसमें नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले, तो उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। और दूसरे है ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते। अगर अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते तो क्या करेंगे, कभी सहज तो कभी मेहनत, कभी बहुत उमंग उत्साह में होंगे तो कभी ठंडे ठाकुर। बहुत पुरुषार्थ से उस पवित्रता को अपनाएंगे या सहज बाबा का वरदान मिला है और वह सहज पवित्र जीवन जी रहे हैं। तो जो इसको पुरुषार्थ के द्वारा करेंगे, अधिक पुरुषार्थ करके मेहनत करके करेंगे, तो उनकी लकीर सीधी भी नहीं होंगी और चमकीली भी नहीं होंगी। लेकिन जिनको वरदान रूप में बाबा से मिला हुआ है तो उनकी वो लकीर कैसी होंगी, चमकीली होंगी, सीधी होंगी। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार ही है पवित्रता। अब बाबा पवित्रता की डेफिनेशन बता रहे हैं कि सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं है, वो तो दुनिया में भी लोग रहते हैं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्रह्मचारी को फॉलो फादर, तो इसको कहा ही जाता है फॉलो फादर। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। बाप और दादा, बाप पता है बिंदी है और ब्रह्मा है आकारी रूप, साकारी रूप, तो हमें स्पष्ट है। तो उसी तरह बाबा कह रहे कि फॉलो भी वैसे करना है जैसे ब्रह्मा का जो आचरण है वो हमें क्या करना है, ब्रह्मा की तरह उस आचरण को करके हमें फॉलो फादर ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में रहना। कंपेनियन और कंपनी, जब भी बाप विदेशियों से मिलते हैं बाबा तो इन दो शब्दों का जिक्र करते हैं कि आप कंपेनियन के बिना तो रह नहीं सकते हो। और कंपनी, कंपनी माना जिस संगठन के साथ हम रह रहे हैं, तो इसको भी बाबा ने क्लियर किया है। तो बाबा ने कहा कि समय अनुसार आवश्यक भी है, कंपनी संगठन के बीच में रहना भी है और अपनी पवित्रता को भी कैसे रखना है। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वह अलग चीज है, वह भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है यह नहीं भूलना है। लेकिन होता क्या है, जो बाप बीज है जिसके कारण हमें यह परिवार मिला हुआ है, उस बीज को ही क्या हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीज है ही गुप्त, जैसे दुनिया में भी बीज को मिट्टी में डाला जाता है, बाद में उससे वो पौधा निकलता है, बाद में उससे वो फल निकलता है। तो बीज है ही गुप्त, इस कारण कभी कभी तो फल भी गुप्त होता है। आलू है, शकरकंदी है और मूंगफली है तो फल भी क्या होते हैं, उनके गुप्त होते हैं। तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो समय आने पर उसको प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है, तभी उसकी वैल्यू है, नहीं तो वो तो अंदर ही रहेगा। तो बाबा ने कहा कि बीच बीच में बाप को छोड़ा तो जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, एक स्पेस हो जाता है और फिर माया खा जाती है। तो जमीन के अंदर जो फल लगते हैं ना, उसको कौन खाता है? चूहा खाता है। हाँ, मूंगफली है और भी कई जो होते हैं फल, हाँ आलू को भी कुतर लेता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो किसान है उसको वो सावधानियां रखनी पड़ती है, दवाइयां डालनी पड़ती है कि जो जमीन के अंदर है, गुप्त है, उसको भी माया कैसे खा लेती है। तो बाबा ने कहा है कि आपस में आपको क्या करना है, संगठन में तो रहना ही है, स्नेह में रहना ही है, समूह में रहना ही है, लेकिन इसके अंदर रहते हुए अपनी पवित्रता की लकीर के अंदर रहना है। समझने में तो होशियार होना। बाबा ने समझा तो दिया और बच्चों ने हाथ भी खड़ा किया, कांध भी हिलाया और समझ भी गए। तो कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, तो बीच बीच में कंपेनियन बनाने का संकल्प आता है। तो क्या कारण होते का उनके पास कि मेरा ख्याल कौन रखेगा, हाँ बीमारी के समय कौन होगा, अभी तो देखो मैं बीमार रहा, लॉकडाउन था, कोई भी नहीं साथ में था, या फिर अभी माताजी भी बुजुर्ग हो रही है, पिताजी भी बुजुर्ग हो रही है, मैं जॉब करूंगा या उनको संभालूंगा। तो ये इतने सारे उनके पास कारण होते हैं कि वो समझते हैं कि कोई कंपेनियन चाहिए। तो बाबा ने कहा कि कंपनी चाहिए, मतलब इस संगठन में रहना है, सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं के बीच रहते हुए, कंपनी के साथ रहते हुए, उस कंपनी किसकी कंपनी में रहना है, एक बाप के कंपनी में रहना है, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। अगर कोई भी सिचुएशन परिस्थिति आती है तो पहले कौन याद आता है, कोई व्यक्ति याद आता है, विशेष सहयोगी याद आता है या बाप आता है। अगर बाप याद आया तो सहयोग मिलना ही है। कैसे सहयोग मिलना है, उस हजार भुजाओं द्वारा सहयोग मिलना ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति याद आता है तो समय पर धोखा मिलना ही है। तो बाबा ने कहा अगर बाप याद आया तो नंबर वन सहयोग मिलेगा, अगर बाप को नंबर टू में रखा तो फिर सहयोग भी उसी अनुसार मिलेगा। तो स्नेह और सहारा, ये दो चीजें बाबा ने समझाई है कि स्नेह सबके साथ रखना है, लेकिन सहारा किसी को नहीं बनाना है, सहारा एक बाप ही हो। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि वो डरते हैं कि नहीं फलाने की याद आएंगी, फलाने में फंस जाएंगे, तो वो दूर दूर रहते हैं। बाबा ने सन्यासी का उदाहरण दिया, तो उनको लगता है ना मालूम किसी में फंस जाएंगे, इसलिए दूरी ठीक है। लेकिन बाबा ने एक बात यहाँ पर समझाई है कि आपको 21 जन्म जो प्रवृत्ति में परिवार में रहना है, उस श्रेष्ठ सतयुगी वो दैवी परिवार में रहना है, तो आपको संस्कार भी यही से डालने हैं, स्नेह के, आपस में मिलजुल कर रहने के, न कि डर कर एक दूसरे से किनारा बना लेना है, एकदम ऐसा कठोर बन के रहना है, मुस्कुराना भी नहीं है, कोई ओम शांति करे तो आगे निकल के जाना है। हाँ, बहुत ही गंभीर लाइफस्टाइल अपना बना लेते हैं। हाँ, कल की मुरली में गंभीरता की डेफिनेशन बाबा ने बताई कि जिनका पेट भरा हुआ है वो तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो स्नेही बनना है लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा कोई नहीं। बुद्धि का सहारा एक बाप हो, जब डिसीजन लेने का समय हो तब पूछ नहीं करनी है, एक बाप के साथ मिलकर डिसीजन लेना है फाइनल। और उसकी कौन सी निशानी होगी जिसका एक ही बाप सहारा होगा? औरों को भी बाप के साथ जोड़ेगा और वो कभी धोखा नहीं खाएगा। और और वो किसी की भी विशेषता पर आकर्षित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। इसको कहते हैं पवित्र। और बाबा ने वो वरदान याद दिलाया जो हमें इस जन्म में लेते ही वो मिला, कौन सा? योगी भव पवित्र भव। बाबा ने कहा यह जो वरदान है सदैव याद रखो, यह ब्राह्मण जीवन का एक आधार है। अगर यह वरदान है तो स्वतः ही क्या है? पवित्र जीवन है। अगर यह वरदान को आपने निजी नहीं बनाया है तो क्या होगा? फिर मेहनत लगेगी। इसलिए इस मेहनत न लगे इसलिए इस वरदान को याद भी रखना है, एक कंपेनियर और एक कंपनी सदा याद रखना है। तो कंपेनियन भी बढ़िया है और कंपनी भी बढ़िया है। तो विशेष बाबा डबल विदेशी बच्चों को इस ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव कर लिया और सुहागिन बना दिया बाबा ने सबको। तो जन्मते ही कौन मिल गया? कंपेनियन मिल गया और कंपनी मिल। तो इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना? बाबा ने प्रश्न पूछा। अभी पहली रेखा हमने देखी योग की, दूसरी देखी पवित्रता की, अभी तीसरी लकीर। अभी तीसरी लकीर के लिए पहली दो रेखाओं का होना जरूरी है, इसका ये क्राइटेरिया है। अगर वो लकीर है तब इस लकीर में सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है? सेवा सेवा सेवा। कईयों ने अपने आप को बस इतना बिजी करके रखा है सेवाओं में, बिजी तो रहना ही है, लेकिन अगर वो पहली वाली दो रेखाएं नहीं है तो इस तीसरी रेखा को आप खींच ही नहीं पाओगे सीधी तरह से। तो ये जो तीसरी लकीर है सेवा की, जो सेवाधारी की लकीर सभी के मस्तक पर बाबा देख रहे हैं, तो सेवा के बिना तो रह नहीं सकते ब्राह्मण। लेकिन इसमें भी क्या बनना है? निर्विघ्न बनना है। इसलिए बाबा ने कहा कि निर्विघ्न बनने का साधन ही है सेवा। और अगर आप सेवा कर रहे हो तो विघ्न तो आएंगे जरूर। आपको निर्विघ्न बनना है तो सेवा जरूरी है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो विघ्न तो उस सेवा में होंगे। तो ये बाबा ने डेफिनेशन बताई है सेवा की। तो बाबा ने कहा है विघ्न आना यह भी क्या है? ड्रामा में नूंद है, ये फिक्स है, ये ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा आने हैं ही, तो इस विघ्न को क्या समझना है? बाबा ने कहा पेपर समझना है। पेपर क्या करता है? हमें अगली क्लास में बढ़ा देता है। तो ये जो विघ्न है इसको पेपर और अपना उन्नति का साधन, अपना टीचर समझना है। तीन बातें बाबा ने इस मुरली में बताई है। और फिर इससे क्या होगा? फिर संगठन में आगे बढ़ेंगे, उन्नति की सीढ़ी बन जाएंगे और दुआ मिलेंगी, दुआओं का अनुभव करेंगे। फिर इस विधि से क्या होगा और इस वृत्ति से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। क्या क्या होगा? सेवा में विघ्न तो आएंगे, इसके लिए बाबा ने कहा ये तो क्या है? ड्रामा है। फिर उससे क्या होगा? उन्नति की सीढ़ी होगी, फिर दुआओं के अनुभवी बनेंगे, दुआ मिलेंगी, और क्या होगा? अथॉरिटी बन जाएंगे। कौन सी? अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। तो विघ्न को विघ्न नहीं समझो, विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। अभी पता है कि यही है कौन, यही है वो मुसीबत हुसैन। लेकिन उसको वो टाइटल नहीं देना है, उसको क्या बोलना है? क्या बोलना है? ये हमारा टीचर है और मीठा भाई है और हाँ बड़ा भाई है। बहुत अच्छी बात बताए कि अगर घर में बड़े कुछ करते हैं, डांटते हैं या आपस में कुछ होता है तो हम घर घर की बात बाहर थोड़ी बताते। अगर घर में बड़े भाई ने छोटे भाई को डांट दिया तो वो जाके थोड़ी बाहर अपने दोस्तों को जाके सुनाएगा क्या कि आज मैंने तो मार खाई। तो ये तो गुप्त बातें होती है ना। तो क्या करना है? हाँ ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये भी मुझे क्या है, पाठ पढ़ाया है बाबा ने आगे। अभी बाबा ने आ गए फिर नए एग्जाम्पल के ऊपर कि जैसे डॉक्टर अगर टांग में दर्द हो रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, वहां फिजियोथेरेपी वाले के पास, तो वो क्या करेंगे, देखेंगे और एक एक्सरसाइज बताएंगे। लेकिन वो एक्सरसाइज करके हम जैसे ही घर आए दर्द और ज्यादा शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हाँ उस समय भी क्या होता, दर्द बढ़ जाता है। तो जो जिनके पास वो नॉलेज नहीं है वो क्या बोलेंगे, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, वो दर्द तो और बढ़ गया। लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं, ये जो थोड़ा सा दर्द बढ़ा है वो किस लिए बढ़ा हुआ है, कि सदा काल के हमें ठीक करने के लिए वो बढ़ा है। इस अगर ये नॉलेज नहीं है कि ये दर्द क्यों हुआ है, बेदर्द बनाने के लिए, सदा काल के लिए हमें बेदर्द बनाएगा। तो अभी कौन सा दर्द होता है हम बच्चों को, सबसे पहला दर्द है सुबह सुबह अमृत वेले, थोड़ा पांच मिनट और ठंड है और और कौन कौन से दर्द होते हैं ब्राह्मण जीवन में हमें, होमवर्क कि अभी नहीं, बाद में मुझे थोड़ा टाइम दो, सोचने का टाइम दो, मनन चिंतन करने का टाइम दो। और कौन कौन सा दर्द होता है, जितने छोटे होते हैं उतने उनके दर्द अलग अलग होते हैं। जो छोटे करते हैं वो बड़े नहीं कर पाते, जो बड़े करते हैं वो छोटे कर नहीं पाते। जैसे छोटे बच्चे का बाबा ने कभी एग्जांपल दिया था, दादा और पोता जा रहे हैं, अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो दादा तो एक एक कदम बड़े मुश्किल से उठा रहे और पोता जब तक दादा दो सीढ़ी चढ़े तब तक वो दो बार ऊपर जाके नीचे आ जाता है, उसको कितना वो एंजॉय है। तो हर एक को क्या करना है, इस दर्द को मिटाने के लिए बाबा जो छोटा दर्द दे रहे हैं उसको स्वीकार करना है। कौन कौन से है वो दर्द वो भी हमने देखे। तो बाबा ने कहा उनकी सेवाधारियों की वो श्रेष्ठ लकीर क्या होंगी, फिर चमकेगी। तो बाबा अभी सेवा में कुछ बातें के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं, सेवा में स्वच्छता। कई बार हम सेवा तो करते हैं लेकिन स्वच्छता का ध्यान ही नहीं रखते। तो बाबा ने स्वच्छता बताई, बुद्धि की, वृत्ति की और स्वच्छ कर्म, तीन बातें की स्वच्छता बताई। जैसे स्थूल में हम स्वच्छता क्या करते हैं, झाड़ू पोछा और क्या करते हैं, झाड़ू पोछा और कौन सा तरीका अपनाते हैं, डिपार्टमेंट में है, कमरे में है, एक एक्यूरेसी हो, एक वातावरण भी कैसे हो, प्रसन्न हो। वहां हम क्या करेंगे, रूम फ्रेशनर लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, कोई सॉफ्ट म्यूजिक बजाएंगे। जैसे कपड़े के लिए बाबा ने कहा हुआ है कि कपड़ा बहुत साफ सुथरा धुलाई किया हुआ है लेकिन उसको प्रेस नहीं किया है तो क्या नहीं करेगा, शाइनिंग नहीं करेगा, शाइन नहीं करेगा। तो बिल्कुल बाबा ने आज तीन प्रकार की स्वच्छता बताई, बुद्धि की स्वच्छता, वृत्ति की स्वच्छता और कर्म में स्वच्छता। तो अगर ये तीन प्रकार की स्वच्छता होंगी तो सफलता क्या होगी, सहज ही मिल जाएंगी। तो बाबा ने पहली स्वच्छता बताई बुद्धि की, कि बीती बात जरा भी स्मृति में आई, वृत्ति में आई, दृष्टि में आई, तो उसको स्वच्छता नहीं कहेंगे। सेवा में जो भी स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होंगी। इसलिए पहली स्वच्छता बाबा ने बताई बुद्धि की, कि बीती को बीती। अगर फिर वो दोबारा हमारे बुद्धि में आती है तो बाबा ने कहा कि वो क्या होगा, अस्वच्छ होगा, मैला होगा, गंदा होगा। तो बाबा ने कहा कि संकल्प भी ना आए, वर्णन करना तो बहुत बड़ी बात है। तो पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसे बना देते। फिर कहते हैं कि मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ। हाँ, पहले से एक वातावरण बनाएंगे और फिर कन्फर्मेशन भी देंगे सामने वाले को, देखो मैंने कल कहा था ना ये ऐसा है और ऐसा ही करेगा, देखो वो ऐसा है और उसने ऐसा ही कर दिया। हाँ, तो बाबा ने कहा कि जैसे व्यर्थ संकल्प, यह व्यर्थ वायुमंडल की क्या हो गई, सृष्टि बना दी। तो इसलिए सदा सच्चे सेवादारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले। तो बाबा ने अभी साइंस का उदाहरण दिया, जैसे एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से दूसरा एरोप्लेन कैसे गिराते हैं बॉम्ब डाल के। तो बाबा ने कहा कि आप शुद्ध संकल्पों के क्या करो, बॉम्ब डालो। ऐसे पावरफुल हो, ऐसे शक्तिशाली संकल्प हो कि जो सामने वाला व्यर्थ और निगेटिव का जो बॉम्ब है उसको खत्म कर दे उधर ही। तो बाबा ने सेवा में स्वच्छता बताई, पवित्रता। तो बाबा ने कहा इसके लिए भी पवित्रता की शक्ति चाहिए। तो सेवा की विशेषता की और अनेक बातें सुनी है, लेकिन सब बातों का स्वार सार बाबा ने बताया, निस्वार्थ निर्विकल स्थिति से सेवा करनी है। कई बार होता है कि ये ना बहुत बड़े वीआईपी है, पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, वो क्या कुछ सहयोग तो करते है नहीं, और क्या बार बार सौगात देनी है ना। कभी कभी ख्याल किसी का चल जाता है। तो निस्वार्थ भाव हो सेवा करते समय या कुछ देते समय, आप उनको ज्ञान दे रहे हो, आप उनको कुछ सौगात दे रहे हो, टोली दे रहे हो या उनके सम्मान कर रहे हो, वो उसमें क्या होना चाहिए, बाबा ने कहा कि निस्वार्थ भाव हो और निर्विकल्प हो। सेवा में विकल्प कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो प्लानिंग में, जब हम सेवा की प्लानिंग के लिए मीटिंग के लिए बैठे हैं तो मीटिंग में बड़े बैठे हैं, एक बार एक बात फाइनल हो गई तो उसमें विकल्प लाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर विकल्प लाएंगे तो उसमें सफलता मिलेंगे ही नहीं। ये बड़ों की आज्ञा है, ये परमात्म डायरेक्शन है, श्रीमत है, ये समझकर हम सेवा करेंगे तो उसमें सफलता मिलेंगी। फिर और कहाँ विकल्प आते हैं, हाँ पता नहीं होगा या नहीं होगा, वहां पर विकल्प आते हैं सेवा करने के बाद, करने से पहले भी आते हैं। पता नहीं, यहाँ तो इस प्रकार के लोग हैं, हाईली एजुकेटेड है, ये बहुत ही हाई लोग, रिच एरिया है, पता नहीं यहाँ इस तरीके से सेवा होगी या नहीं होगी। हाँ, कल राठी, तो कुछ भी हो सकता है। तो विकल्प रखने ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन, यह होना ही है, सब वैरायटी होंगी, लेकिन बातें आने भी हैं। भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक एक बात की याद में मिलाने वाले एक रस स्थिति वाले रहो। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं, अब क्या करेंगे, बहुत विचार हो गए, किसकी माने और किसकी न माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। पहले खुद को, स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव में आगे बढ़ाते चलो। तो फिर बाबा ने क्या कहा, जैसे कल गीत गाया, कौन सा गीत गाया, बाबा ने आ वाह बच्चे वाह। पहले बच्चों ने गीत गाया वाह बाबा वाह, और फिर बाबा ने भी गाया कि वाह बच्चे वाह। तो बाबा ऐसे बच्चों की लगन, उमंग, उत्साह और सफलता देखकर खुश होते हैं और बाबा गीत गाते हैं वाह बच्चे वाह। तो बाबा ने यहाँ सेवा की क्या की, महिमा की। बच्चों ने जो सफलता पूर्वक सेवाएं की, तीनों लकीरों को बाबा देख रहे हैं। फिर बाबा ने पर्दे की बात सुनाई कि जैसे कोई वैल्यूएबल चीज होती है उसको ढका जाता है तो लोगों की और जिज्ञासा बढ़ जाती है कि क्या होगा उसके नीचे, क्या होगा। सबकी नजरें उस तरफ होती है। जैसे किसी भी चीज का अनावरण करना होता है, हम देखते हैं दादियां भी वो पर्दा खींचती है तो सबकी नजर उधर होती है, सब कैमराज उधर लगे हुए होते हैं। या कोई स्टैचू है, मूर्ति है, तो उसका अनावरण करते समय भी क्या किया जाता है, उस मूर्ति के ऊपर से पर्दा हटाया जाता है। या कोई वैल्यूएबल चीज है तो उसके ऊपर पर्दा रखा जाता है और बाद में उसको हटाया जाता है। किसी को सरप्राइज करते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं तो वैसे देते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह विधि भी देखो ठीक है कि जैसे पर्दे के अंदर कोई चीज को रखते हैं तो एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो बाबा ने कहा कि यह बीज जो बाबा है यह भी गुप्त है। कहा गुप्त है, मिट्टी के अंदर छिपा हुआ है तो उसको छिपना ही, अंदर ही रहना है। लेकिन प्रत्यक्ष क्या होता है, फल फूल है ना, तो हम बच्चे। तो बाबा ने कहा कि आप भी खुशी में नाचते हो ना, वाह बाबा वाह। तो कहते हो लेकिन वाह सेवा भी कहते हो, बाबा ने प्रश्न पूछा है। तो सभी अपने सेवा में खुश है, बाबा पूछ रहे हैं, है खुश सभी अपने सेवा में? तो सेवा में खुश क्यों नहीं होते, अभी कारण बताओ। संस्कारों का टकराव, एक तो सेवा साथी है या जिनकी सेवाओं के निमित्त है, और अपनी कमजोरी खुद की। हाँ, पहले तो दूसरे की देख ली लेकिन खुद की भी होती है। और सेवा में दुखी क्यों होते, हाँ कोई इच्छा होती है, कंपैरिजन कि उसकी सेवा अच्छी है, उसका तो अच्छा है, मुझे तो ये करना पड़ता है, मुझे तो वो करना पड़ता है। और हाँ कि ये सेवा मेरा भाग्य बनाने वाली है, 21 जनों का भाग्य बनाने वाली ये सेवा, जैसे कि लॉटरी है। उसकी जो उस सेवा का महत्व ही नहीं जानते हैं, यज्ञ सेवा का महत्व ही नहीं। कल भी बाप दादा ने मधुबन वालों की महिमा की, कितनी महिमा की बाबा ने कर आगे की लाइन में तो बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा ने कितना प्यार भी किया, होमवर्क भी दिया और मधुबन वालों की खास क्या की, प्रशंसा की, महिमा की। तो ये महिमा बाबा कह रहे हैं, अपनी अपनी महिमा को याद रखना है और वाह सेवा वाह करना है। कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, कोई भी साधारण नहीं होते। तो उस सेवा को समझते हुए बाबा ने कहा कि वाह सेवा वाह करते हो। यह चारों ओर बाबा ने कहा कि विदेश में भी और देश में भी संगठन से वर्ग की सेवा जो हो रही है, मतलब विंग्स की सेवा के बारे में बाबा बता रहे कि वह प्रोग्राम करो। तो बाबा ने यहाँ पर बताया कि सेवा में उमंग उत्साह भी हो, और मधुबन में आना है लेकिन मधुबन में आने की विधि बाबा ने बताई कि पहले आपस में संगठन बनाओ, फिर जोन वाइज बैठो, फिर जोन वाइज बैठने के बाद फिर मधुबन में आओ, छोटे छोटे संगठन बनाओ, एरिया वाइज बनाओ, फिर जोन में बैठो, और जब बड़े संगठन तैयार हो तब आपस में मिलकर स्नेह मिलन करने के लिए मधुबन में आओ। तो मधुबन में हो जाएगा फिर बड़ा संगठन। तो बाबा ने कहा कि अभी जो तीनों सत्ताएं हैं मुख्य, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों का क्या करो, एक सैंपल बनाओ। हाँ, एक ही टॉपिक हो और जिसके नीचे सब आ जाए, गांव भी हो और देश विदेश के भी हो। तो बाबा ने यात्यार दिया कि सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को सदा एक रस, निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को विश्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का यात्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को यात्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड, पहले तो बाबा ने बताया था कंपेनियन कंपनी, और अब बताया कि कंबाइंड हो, कम और बाइंड। वहां से बाबा को बुलाना है कम, ऊपर से आ रहा है और बाइंड, बाइंड मतलब एकदम चिपके रहना है, जैसे बुक को बाइंड करते हैं या कोई नई बैट खरीदते हैं ना, तो वो बैट टूटे नहीं इसलिए उसको क्या किया जाता है, धागे को फेविकॉल लगा के उसको बाइंड किया जाता है, उसको बाइंड किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह बाप और मैं कैसे होना है, कम एंड बाइंड। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं, कभी भूलते नहीं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखूनों को माया हिला नहीं सकती। आपको पता है बिल्ली, कुत्ता, शेर, तो इनके जो पैरों के निशाने सेम होते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बिल्ली और कुत्ते के निशान अगर मिट्टी में है तो उसमें साथ साथ नाखून भी दिखाई देते हैं, नाखून के भी निशान होते हैं, लेकिन अगर शेर और चीता है तो उसके नाखून छिपे हुए होते हैं। जब उसको जोर लगाना होता है तभी वो बाहर निकालते हैं, मिट्टी में वो दिखाई नहीं देते गुप्त, हाँ नाखून। इसी से वो वन विभाग पता करता है कि ये कुत्ता बिल्ली है या शेर चीता है। तो बाबा ने कहा है आपको क्या करना है, संकल्प रूपी नाखूनों को माया हिलाए नहीं, इसलिए उस नाखूनों की भी क्या करनी है, अटेंशन रखनी है, सेफ्टी रखनी। कुत्ते बिल्ली के जो नाखून है ना वो ऐसे ही बाहर होते हैं हमेशा, लेकिन इनके ना जब चाहे बाहर निकलते जब चाहे अंदर होते, उसमें एक मूवमेंट होती है, जैसे हमारी उंगलियों में मूवमेंट है उनके नाखूनों में मूवमेंट होती है। स्लोगन, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
चुप रहना चाहे हम ये आंखें बोलती है, मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा, चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले वरदान।